রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারে, রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারে, জয় গোপী জন বল্লভ গিরিবর ধরে, জয় গোপী জন বল্লভ গিরিবর ধরে, যশোদানন্দন ব্রজজন রঞ্জন, যশোদানন্দন ব্রজজন রঞ্জন, যমুনা তীরবন খনি, যমুনা তীরবন খনি, রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারে, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারে, জয় রাধা মাধব ব্রহ্মাণ্ড পরিব্রাজ কচ্ছপরি অষ্টোত্তর শাস্ত্রী শ্রীমদেশ ডিভাইন গ্রেস অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ কী জয়। নিত্য লীলা ইসকন ফাউন্ডার আচার্য শিব দি হোল ওয়ার্ল্ড জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ কী জয়। নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর কী জয়। প্রেম সে কহো শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ কী জয়। শ্রী শ্রী রাধা পার্থ সরসী ললিতা বিশাখা গোবিন্দ গোপীনাথ শ্যাম কুণ্ড রাধা কুণ্ড গিরি গোবর্ধন কী জয়। শ্রী শ্রী গণতাই ভগবান কী জয়। শ্রী শ্রী সীতারাম লক্ষ্মণ হনুমান কী জয়। সমবেত ভক্ত বৃন্দ কী জয়। আনন্দ কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কী জয়। ইসকন বর্তমান আচার্য বৃন্দ কী জয়। গৌর প্রেমানন্দ অল গ্লোরিস টু সিমিল্ড ডিভোটিস, অল গ্লোরিস টু সিমিল্ড ডিভোটিস, অল গ্লোরিস টু সিমিল্ড ডিভোটিস, অল গ্লোরিস টু শ্রী গুরু এন্ড গোরাম্মা। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ ভগবদ গীতা থারূপ অধ্যায় দো গীতা কা সার শ্লোক সংখ্যা 37 পৃষ্ঠ সংখ্যা 84 বলিয়ে। হতো বা প্রাপ্যসি স্বর্গম জিত্বা বা ভোক্ষসি মহিম, তস্মাদ উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়ম যুদ্ধায় কৃত নিশ্চয়ঃ, হতো বা প্রাপ্সি স্বর্গম জিত্বা বা ভোক্ষসি মহিম, তস্মাদ উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়ঃ যুদ্ধায় কৃত নিশ্চয়ঃ, হতো বা প্রাপ্সি স্বর্গম त्वावा भोक्षसे महि तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। सद्धार्थ बोलिए, हतः मारा जाकर वा या तो प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे स्वर्गम स्वर्गलोक को, जित्वा विजयी होकर वा अथवा भोक्षसे भोगोगे मही पृथ्वी को, तस्मात् अतः उत्तिष्ठ उठो कौन्तेय हे कुंती पुत्र युद्धाय लड़ने के लिए, कृत दृढ़ निश्चय संकल्प से। अनुवाद मेरे पीछे बोली, हे कुंती पुत्र तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। यहां धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए, बोलिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते तस्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुनवाणी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए, श्लोक समझेंगे। भगवान कह रहे हैं हतोवा प्राप्तसि स्वर्गम, अथवा तुम अगर मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जित्वा वा भोक्षसे मही, अथवा जीतोगे तो पृथ्वी को भोगोगे। तो क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना, दोनों पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां घी में है, युद्ध करने से हर प्रकार से लाभ है, या तो मरो या फिर जीतो, दोनों हाथों में लड्डू, हाँ दोनों हाथों में लड्डू है ना। युद्धाय कृप निश्चया, भगवान कहते हैं तस्मा दुतिष्ठ कौंते, इसलिए हे कौंते हे कुंती पुत्र तुम उठो युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके। तो भगवान कह रहे हैं तस्मा दुतिष्ठ कौंते युद्धाय कृप निश्चया, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ, निश्चित रूप से युद्ध करना है, युद्ध को नहीं छोड़ना है, जियो या मरो है ना, युद्ध में जीना है युद्ध में मरना है, युद्ध को जीतना है, या तो युद्ध को जीतना है या फिर मरना है, युद्ध में पीठ नहीं दिखाना है ना। ये क्षत्रिय का जो है भगवान धर्म बदला रहे हैं, क्षत्रिय का ये धर्म है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित ना थी, फिर भी उन्हें युद्ध करना था, क्योंकि यदि वे युद्ध में मारे भी गए तो वे स्वर्ग लोक को जाएंगे। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित ना थी, ना? अभी तक भगवान जो है निश्चित रूप से नहीं बता रहे हैं, तो ये सामान्य व्यक्ति के लिए ये भगवान की शिक्षा है। अर्जुन की विजय तो निश्चित है, ऐसे कई कारण है जिनसे पता चलता है कि अर्जुन की विजय निश्चित है। आगे चल करके भगवान विश्वरूप दिखलाएंगे तो भगवान कहेंगे कि पहले से ही ये मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, है ना, तुम केवल यश प्राप्त करो, है ना? लेकिन हर व्यक्ति के लिए ये शिक्षा तो नहीं है कि भी युद्ध तुम तब करो जब युद्ध में विजय निश्चित हो, ऐसा तो नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से हर क्षत्रिय के लिए शिक्षा दे रहे हैं कि उसका परम कर्तव्य है युद्ध करना। युद्ध चाप पलायनम, क्षत्रिय का जो स्वभाव है स्वाभाविक कर्म भगवान ने बताया 18वें अध्याय में, युद्ध से ना भागना ये क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है, है ना। तो युद्ध से नहीं भागना, जैसे कि भगवान राम भी जो है भरत के पुत्र पुष्कल को जब भेजते हैं अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे, है? तो भगवान राम ने पुष्कल को ये कहा कि देखो घोड़े के माथे में तो पत्र बंधा है, है? कि राम जो है इस पूरी पृथ्वी के एकमात्र सम्राट हैं, है? जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करता है तो इस घोड़े को पकड़े, है? और हम बलपूर्वक इस घोड़े को छुड़ाएंगे, युद्ध करें, है ना। तो पुष्कल को भगवान राम कहते हैं कि देखो हमारे वंश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो युद्ध में पीछे हटा हो या पीठ दिखलाई हो, इसलिए युद्ध में पीठ नहीं दिखलाना, चाहे मारे जाओ लेकिन युद्ध में पीठ नहीं दिखलाना। ये कह करके भगवान राम ने पुष्कल को अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे भेजा, है ना। अर्जुन का भी इसी प्रकार का, अर्जुन के वंश में भी जितने राजा हुए हैं, भरत वंश, है ना, कुरु वंश, जितने भी क्षत्रिय हुए हैं युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखलाते, या तो मारे जाते हैं या फिर युद्ध को जीतते हैं, है ना। तो भगवान यहां कह रहे हैं तस्मा तो किससे कौन थे, इसलिए हे कुंती पुत्र उठो युद्ध आए कर्तव्य, युद्ध के लिए निश्चय करके, मतलब अपने हित के बारे में सोचो कि तुम्हारा हित किस में है और तुम्हें वो कार्य करना है। इस भौतिक संसार में और दुनिया भर की चिंता मत करो कि इनका नुकसान होगा या इनका फायदा होगा, ये है वो है ना। इस भौतिक संसार में आप स्वयं अगर बड़े संकट में फंसे हो, अपने को संकट से निकालो। क्योंकि अर्जुन की चिंता थी कि युद्ध होगा तो कुल का नाश होगा, कुल के नाश से क्या होगा, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म, कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और कुल धर्म के नष्ट होने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है, वर्ण संकर उत्पन्न होने से जाति धर्म कुल धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। तो इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि युद्ध होगा और इतना जो है ना संहार होगा। तुम अपना सोचो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र है। बाकी दुनिया भर का ठेका क्या आपने लिया है? कि आप कोई काम करते हो तो कितना नुकसान होगा किसका और कितना फायदा होगा किसका, ये सब आपको ये आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? ये पूरी सृष्टि के मालिक भगवान है, तो वो जो ना पालन कर रहे हैं पूरी सृष्टि का, है ना। तो अर्जुन को जो चिंता थी कुल का नाश होगा तो उससे कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होगा और पिंड क्रिया और जल क्रिया लुप्त हो जाएगी, तो फिर जो ना उनके पितर नरक में चले जाएंगे, है ना। इतना सब सोचने की क्या जरूरत है? आप जो कर्म कर रहे हो उससे आपको जो है क्या गति मिलेगी उस पर विचार करो। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम जो है अगर मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे और जीतोगे तो पृथ्वी को भोगोगे, और कुछ जरूरत नहीं है सोचने की, है ना। हाँ, फिर विचार भी करना कि पाप भी ना लगे। आगे चल करके भगवान फिर ये भी कहेंगे कि पाप ना लगे इसके लिए तुम्हें कैसे करना है, सुख दुख को समान करके युद्ध करना है, जीत हार को समान समझ करके युद्ध करना है। तो फिर आगे भगवान बात बताएंगे, या अभी तो भगवान ये बता रहे हैं कि इस जीवन में अगर तुम जो है जिंदा रहे तो युद्ध जीतोगे तो राज्य भोगोगे और मर गए तो तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे। अथवा भगवान एक ये भी तर्क दे रहे हैं युद्ध करने के पक्ष में, भगवान का एक ये भी तर्क है, और ये भी जो है ना बड़ा जो है ना प्रबल तर्क है। क्योंकि उद्धरेनात्मनात्मानम नात्मानम शादेत, छठवें अध्याय में भगवान ने किस तो कहा है कि अपने से अपना उद्धार करो, अपने द्वारा अपना जो है पतन मत करो। आत्मा में आत्मनो बंधुर आत्मा विपुर आत्मना, व्यक्ति अपना ही मित्र होता है और अपना ही शत्रु होता है, है ना। तो इस युद्ध के द्वारा मतलब कुल को कितना नुकसान होगा, कुल का क्या फायदा होगा, हम ये जो कर रहे हैं इनका क्या फायदा, इनका क्या नुकसान, इतनी चिंता और अपनी इतना तनाव अपने दिमाग में लेने की क्या जरूरत है? आप जो कर्म कर रहे हो उसमें आपको कर्म बंधन तो नहीं हो रहा है, आपको पाप तो नहीं लग रहा है, इतना सोचो तो अपना कार्य निश्चित हो जाएगा, है कि नहीं। तो फिर तो बड़ी परेशानी होगी कि मैं कोई काम कर रहा हूं तो इनका कितना फायदा, इनका कितना फायदा, इनका कितना नुकसान, इनका कितना नुकसान, दुनिया भर का फायदा नुकसान सोचते रहोगे तो फिर जीवन कितना जटिल हो जाता है। फिर कैसे निर्णय कर पाओगे क्या करूं क्या ना करूं, परेशान ही परेशान रहोगे, है ना। आपको अपना देखना है कि आपको जो ना कर्म बंधन तो नहीं हो रहा है कोई काम कर रहे तो, है ना। नहीं तो फिर तो बहुत दिक्कत है। दुनिया भर के जो ना संबंध बनाए हैं अर्जुन ने, ये मामा है, ये चाचा है, ये ससुर है, ये साले हैं, ये भाई हैं, ये हैं, दुनिया भर के संबंध बनाए। अब उन सब को जो ना खुश करना है, इनको भी उनको भी उनको भी खुश करना है, तो फिर परेशान होते रहो, है कि नहीं।
तो भगवत गीता जो है ना निश्चय युद्ध है, कृत निश्चय, कृत निश्चय। एक निश्चय करो तुम युद्ध करना है, तुम अपना ही जो है ना फायदा कर रहे हो या अपना ही नुकसान कर रहे हो, है ना। अब भगवान ने अर्जुन को यहां किस विशेष शब्द से संबोधित किया है, अर्जुन को भगवान ने किस नाम से संबोधित किया है, कौंते, कुंती पुत्र, है ना। तो हमने आज विशेष रूप से जो है तैयारी की है कुंती महारानी की शिक्षा के बारे में, क्योंकि भगवान कुंती महारानी की याद दिला रहे हैं अर्जुन को कि कुंती महारानी ने क्या संदेश दिया था तुमको। जब भगवान पांडवों के दूत बनकर के कौरवों की सभा में गए थे तो कौरवों की सभा में बड़ी लंबी बातें हुई और आखिर निष्कर्ष यही निकला कि युद्ध ही होना है और कोई दूसरा उपाय नहीं है, है ना। तो फिर भगवान कुंती महारानी के महल में आए, तो जब भगवान कुंती के पास आए तो भगवान ने कुंती के घर में जाकर के उनका चरण स्पर्श किया। भगवान ऐसे थोड़े कि मतलब ऐसे चले आए, है ना, भगवान कोई काम करते हैं पूरा काम करते हैं। कुंती महारानी वहां है, पांच पांडवों की माता है, तो कुंती के चरण स्पर्श किए भगवान ने और कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ था वो संक्षेप से सुना दिया, क्योंकि कुंती तो महल में थी तो कुंती को कैसे समाचार मिलता कि कृष्ण ने सभा में क्या बातें कही और किसने क्या क्या बातें कही। तो कृष्ण सब बातें संक्षेप में कुंती को सुनाई। उन्होंने कहा, बुआ जी, मैंने और ऋषियों ने तरह तरह की युक्तियों से अनेकों मानने योग्य बातें कही, किंतु दुर्योधन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। कौन कह रहा है? भगवान कुंती से कह रहे हैं, दुर्योधन के अनुयायी इन सब वीरों के सिर पर काल मंडरा रहा है, मरना चाहते हैं। भगवान कुंती से कह रहे हैं कि दुर्योधन और उसके अनुयायी ये सब मरना चाहते हैं, अब मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूं क्योंकि मुझे शीघ्र ही पांडवों के पास जाना है। बताओ तुम्हारी ओर से मैं पांडवों से क्या कह दूं, अपना संदेश बताओ क्या है। अब कुंती महारानी ने बड़ा विस्तृत संदेश दिया है ना, उसको मैं कुछ उसका अंश पढ़ के सुनाऊंगा। कुंती ने कहा, केशव, मेरी ओर से तुम राजा युधिष्ठिर से कहना कि पृथ्वी का पालन करना तुम्हारा धर्म है, उसकी बड़ी हानि हो रही है, सो अब तुम इसे वृथा मत खोना। बेटा, क्षत्रियों को प्रजापति ब्रह्मा ने अपनी भुजाओं से उत्पन्न किया है, अतः उन्हें अपने बाहुबल से ही आजीविका करनी चाहिए। अपनी भुजाओं के बल पर ही संपत्ति, धन संपत्ति प्राप्त करनी चाहिए क्षत्रियों को, भीख मांग करके नहीं, है ना। पूर्व काल में कुबेर ने राजा मुचकुंद को यह सारी पृथ्वी दे दी थी, परंतु मुचकुंद ने इसे स्वीकार नहीं किया। मुचकुंद महाराज ने स्वीकार नहीं किया कि आप दान में दे रहे हो, है ना, तो क्षत्रिय दान नहीं लेता। जब उसने अपने बाहुबल से प्राप्त किया तभी छात्र धर्म का आश्रय लेकर उन्होंने इसका यथावत शासन भी किया। मुचकुंद ने कहा कि मैं आपके देने पर नहीं लूंगा, मैं छीन करके लूंगा, तो कुबेर से युद्ध करके उनको हरा करके फिर पृथ्वी ली मुचकुंद ने। क्षत्रिय का धर्म है। कुबेर कहते हैं कि तुम ले लो, मैंने तुमको दे दिया। बोले, ऐसे कैसे दे दिया, ऐसे मैं कैसे ले लूंगा, मैं युद्ध करके आपसे छीन करके लूंगा। ये क्षत्रिय का ये धर्म होता है कि वो किसी की दी हुई चीज ऐसे नहीं लेता है कि मतलब छोटा हो जाए, भाई आपने बड़ी दया की है मुझे दिया है, नहीं। राजा से सुरक्षित रहकर प्रजा जो कुछ धर्म करती है उसका चौथा अंश राजा को मिलता है, चौथा अंश राजा को मिलता है जो प्रजा धर्म करती है। यदि राजा धर्म का आचरण करता है तो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है और अधर्म करता है तो नरक में जाता है। यदि वह दंड नीति का भी ठीक ठीक प्रयोग करे तो उससे चारों वर्णों के लोग अधर्म करने से रोककर धर्म मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। राजा के लिए दंड देना बहुत जरूरी है, क्यों, जिससे लोग अधर्म नहीं करेंगे और धर्म करेंगे, और धर्म करेंगे तो राजा को भी उसका पुण्य मिलेगा, है ना, और अधर्म करेंगे और राजा दंड नहीं देता है तो उनके धर्म का भी वो पाप राजा लेना राजा लेगा। इसलिए राजा को जरूरी है क्या करना, दंड देना। कोई अधर्म करता है तो उसको दंड देता है, इससे राजा को फिर अधर्म नहीं लगता। अगर राजा दंड नहीं देता है, दया करता है कि भाई हमने दया कर दी, चलो तुम अधर्म करते रहो हमने दया कर दी, तो राजा को उसके अधर्म का हिस्सा लेना पड़ेगा, तो दंड देना जरूरी है राजा के लिए। वास्तव में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली इन चारों युगों का कारण राजा ही होता है। इस समय अपनी बुद्धि से तुम जिस संतोष को लिए बैठे हो, कुंती कह रही है क्या, कुंती महारानी क्या कह रही है, जिस संतोष को लिए बैठे हो तुम जिस बुद्धि से, उससे तो तुम्हारे पिता पांडु ने, मैंने अथवा तुम्हारे पितामह ने भी कभी नहीं चाहा। क्षत्रिय के लिए संतोष करना अच्छा नहीं है, है? कि संतोष से बैठे रहो, है ना, ये अच्छा नहीं है। मैं सर्वदा तुम्हारे यज्ञ, दान, तप, शौर्य, बुद्धि, महत्ता, बल और ओज की ही कामना करती रही हूं। धर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि वह राज्य प्राप्त करके किसी को दान से, किसी को बल से और किसी को अपने मधुर भाषण से अपने अधीन करे। ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से रहे, क्षत्रिय प्रजापालन करे, वैश्य धन संग्रह करे और शूद्र इन सब की सेवा करे। क्षत्रिय के लिए कृषि करना भी उचित नहीं है कि तुम खेती करके अपना जीवन निर्वाह करो कि चलो ठीक है खेती करेंगे, पांचों पांडवों खेती करें। तो कुंती महारानी कहती है कि ये उचित नहीं तुम्हारे लिए कि तुम खेती करो या भिक्षावृत्ति से निर्वाह करो, ये भी क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, प्रजा की को भय से बचाने वाले हो, बाहुबल ही तुम्हारी आजीविका का साधन है, भुजाओं का बल ही तुम्हारी जीविका का साधन है, भुजा बल। महाबाहो, तुम्हारे जिस पैतृक राज्य को शत्रुओं ने हड़प लिया है, तुम्हें साम, दान, दंड, भेद या नीति किसी भी उपाय से उसका उद्धार करना चाहिए। इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी कि तुम जैसा पुत्र पाकर भी मैं दूसरों के टुकड़े पाती हूं, कितना बड़ा दुख है मुझे। अतः क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम युद्ध करो। कुंती महारानी कृष्ण से कह रही है कि मेरा संदेश देना पांडवों को, है ना। तो अर्जुन को और पांचों पांडवों को भगवान ने संदेश कुंती महारानी के पहले दे दिया है, इसलिए यहां कौंतेय कहकर के भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि याद करो कुंती महारानी का संदेश जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, है ना। तो पहले संदेश भगवान दे चुके हैं। अब कुंती महारानी कहती हैं, कृष्ण इस प्रसंग में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाती हूं, उसमें विदुला और उसके पुत्र का संवाद है। विदुला छत्राणी थी, बड़ी यशस्विनी, तेज स्वभाव वाली, कुलीन और दीर्घ दर्शनी थी। राजसभाओं में उसकी अच्छी ख्याति थी, शास्त्र का भी उसे अच्छा ज्ञान था। एक बार उसका पुत्र परास्त होकर, शत्रुओं से परास्त होकर घर में पड़ा हुआ था, उस समय उसने उसे फटकारा, अपने पुत्र को, क्या बोली, तू मेरा पुत्र नहीं है और न तूने अपने पिता के वीर से ही जन्म लिया है, तू तो शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाला है। क्षत्रिय को क्षत्रियों का आनंद नहीं बढ़ाना चाहिए, शत्रुओं को कष्ट पहुंचाना चाहिए। जो क्षत्रिय होता है अच्छा वही कहलाता है जो शत्रुओं को दुख पहुंचाए। अर्जुन को कहते परम तप, शत्रुओं को जो तप आए, है ना, शत्रुओं को आनंदित ना करे क्षत्रिय के लिए। तो डांट रही है माता, डांट रही है, तुझमें जरा भी आत्माभिमान नहीं है, इसलिए क्षत्रियों में तो तू गिना ही नहीं जा सकता। तेरी बुद्धि भी नपुंसकों जैसी है। अरे प्राण रहते तू निराश हो गया, यदि तू कल्याण चाहता है तो युद्ध का भार उठा, तो अपने आत्मा का निरादर ना कर और अपने मन को स्वस्थ करके भय को त्याग दे, खड़ा हो जा, हार खाकर पड़ा मत रह। इस प्रकार तो तू अपना मान खोकर शत्रुओं को आनंदित कर रहा है, इससे तेरे मित्रों को तो शोक हो रहा है। देख प्राण जाने की नौबत आ जाए तो भी पराक्रम नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे बाज निस्संग होकर आकाश में उड़ता रहता है, वैसे तुम भी रणभूमि में निर्भय होकर विचरण कर। इस समय तो तू इस प्रकार पड़ा है जैसे कोई बिजली का मारा हुआ मुर्दा हो। बस तू खड़ा हो जा, शत्रुओं से हार खाकर पड़ा मत रह। वीर पुरुष रणभूमि में जाकर उच्च कोटि का पराक्रम दिखाकर अपने धर्म से उर्ण होता है, वो अपनी निंदा नहीं करता। विद्वान पुरुष फल मिले या ना मिले इसके लिए चिंता नहीं करता, वह तो निरंतर पुरुषार्थ कर्म करता रहता है, उसे अपने लिए धन की भी इच्छा नहीं होती। तू या तो अपना पुरुषार्थ बढ़ाकर विजय प्राप्त कर, नहीं तो वीर गति को प्राप्त हो। वीर गति मतलब युद्ध में मरना। इस प्रकार धर्म को पीठ दिखाकर किस लिए जी रहा है,